الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون صلوات دي محمد علی محمد پر بس بات ہو رہی تھی کل جہاں آپ نے بات چھوڑی تھی وہیں سے لے کر آگے چلتے ہیں کہ بہت سارے نظام درجنوں نظام ہیں انسان کی فلاح کے لیے بنائے گئے نام بدلتے رہے لیکن ہے تو صحیح بہت سارے ہر آدمی اپنے طور پہ کسی نظام کی تشریح کرتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے کا اور پھر اس کے بعد دوسرے راستے پہ چل پڑتا ہے یہی ہو رہا ہے جو پڑھ رہے ہیں تاریخ میں وہ بھی یہی ہو رہا ہے جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر کمیونزم آیا تو اس کی بہت ساری قسمیں بنتی چلی گئیں کمیونزم ہوا پھر اس کے بعد سوشلزم ہوا یعنی اسی میں سے اس کے جو بغل بچے یا انڈے بچے نکلنا شروع ہوئے پھر وہ ماؤزم نکلا پھر مارکسزم نکلا پھر لیننزم نکلا اور پتہ نہیں کون کون سے ازم 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 نکلتے چلے گئے ہے نا یہ سامنے کی بات ہے تو ایسی بات نہیں ہے وہ سب تاریخ کے عجائب خانوں کا وہ سب زینت بنتے گئے لائبریری میں رکھے ہوئے جا کے پڑھ لیجئے کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا لیکن بظاہر سب کا ایک مقصد کامن تھا کہ انسانوں کی فلاح ٹھیک ہے نا انسان یعنی سب اس بات کے لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ سب قائل ہے کہ ایک نظام ہونا چاہیے بھائی ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں انسان سسٹم کے تحت رہے سسٹم سے ہٹ کے نہیں رہا جا سکتا سسٹم لازم ہے پہلی چیز تو ایک سسٹم ہونا ضروری ہے اور اس سسٹم کا نگران ہونا بھی ضروری ہے یہ بھی عقل کہتی ہے یہ بھی فطرت کہتی ہے یعنی وہ خوارج جو یہ کہتے تھے کہ لا حکم الا للہ کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے لا حکم ان الحکم الا للہ مختلف نعرے کا مطلب ہے کہ ان الحکم للہ کا بھی یہی معنی ہے کہ کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے مگر انہوں نے بھی جب اپنے گروہ بنائے تو ایک سردار کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی پڑی نا سردار کی ضرورت ایک رہبر کہہ لیجیے رہنما کہہ لیجیے فاسق یا فاجر ایک امیر کی ضرورت پڑی لابد للناس ہے امیر مولا عارفان مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لابد للناس امیر لابد للناس من امیر ایک امیر کا ہونا ایک رہبر کا ہونا لوگوں کے لیے ضروری ہے بر او فاسق چاہے وہ رہبر نیک ہو چاہے وہ بد ہو ہونا تو ہے رہنما کا ہونا ضروری ہے تو عقل کیا کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ نبی فاسق کو رہبر کیوں بناؤں نیک تو بناؤں گا اور جنہوں نے نیک نہیں بنایا نیک سمجھ کے فاسقوں کو بنایا تو رہبر کی ضرورت تو انہیں بھی تھی نا رہنما کی ضرورت تو تھی تو یہ تو طے ہے کہ ایک سسٹم چاہیے اس سسٹم کا نگرانی کرنے والا بھی ایک ہونا چاہیے ایسے ہی ہے سسٹم چاہیے اس سسٹم کا نگرانی کرنے والا بھی ہونا چاہیے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہونا چاہیے وہ سسٹم کیسا ہونا چاہیے اللہ کا بنایا دیکھیے ابھی ہم دعوے کر رہے ہیں یہ دعوے کرنا بہت آسان ہے دلیلیں دینا ثابت کرنا یہ بڑا مشکل ہے اس میدان میں تو بعد میں آئیں گے پہلے اپنا دعویٰ بیان کریں ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ بہترین نظام جو اللہ کے لیے جو انسانوں کے لیے اللہ نے بنایا وہ کیا ہے ان دینا عند اللہ الاسلام کہ اس کا پسندیدہ دین پسندیدہ راستہ پسندیدہ مشرب پسندیدہ مسلک وہ کیا ہے اسلام ہے اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہے بس اسی کے سامنے سر جھکا دو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اپنے سروں کو جھکا لو یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ بہترین دین جو ہے وہ کیا ہے اللہ کا بنایا ہوا انسانوں کے مقابلے میں اللہ کا بنایا ہوا دین سب سے بہتر ہے اچھا بھائی یہ ہمارا دعویٰ ہے اگر ہم یہ اسلام اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اتنی شدومت اور اتنی جدوجہد کر رہے ہیں تو لوگوں کو کیا پریشانی ہے بھائی آپ اپنی اپنی مرضی کا سسٹم اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں آخر مسئلہ کیا ہے کہ جب یہ نام لیا جائے اس سسٹم کا نام لیا جائے تو سب پوری اسی شد و مت کے ساتھ جتنی شد و مت کے ساتھ ہم اصرار کر رہے ہیں یہ سسٹم ہونا چاہیے اسی شد و مت کے ساتھ پوری دنیا اتحاد کر لیتی ہے ये नहीं ये नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, बादशाहत हो, आमरियत हो, डिक्टेटर हो, हमारी दी हुई नूली लंगड़ी, वो जिसकी तारीफ कल मैंने कर दी, वो आलमी शोहरत याफ्ता बदनाम जमाना जब हुरियत हो, आलमी शोहरत याफ्ता और बदनाम जमाना, जिसने कल बात सुनी है मेरी उसकी समझ में तो आ गई नहीं बात, तो भाई मेरी अभी इजहार राय की आजादी है, मेरी लिए तो यही है आलमी शोहरत याफ्ता बदनाम जमाना, अकवाम मुत्तहिदा की बांदी नहीं, अकवाम मुत्तहिदा भी बांदी है उस जमहूरियत की बांदी, यानी करीब बांदी तो समझते हो ना भाई, अकवाम मुत्तहिदा जिसकी बांदी वो जमहूरियत, पूरी दुनिया को जो अपना गुलाम है कनीजी में लेना चाहता है वो जमहूरियत, ये बदनाम जमाना वो चाहते हैं ये मुसलमान क्यों हो, आखिर क्यों इतनी रुकावटें, क्योंकि कोई मजहब जवाब नहीं दे रहा, किसी मजहब के पास सिस्टम नहीं है, अगर है तो नहीं है, खो दिया उन्होंने अपने आप से, गुम कर दिया, कैसे गुम कर दिया कि अब दोबारा वो आ नहीं सकता। यहां पर भी मौलाए आरिफान अली ने भी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक हाकिम की एक निगरान की, भाई हम उसके गुलाम हैं जो मौला है, मौला है ना हमारा, मौला किस माना में है, मौला विलायत से निकला है ना भाई, मौला किस माना में है, मजहबी माना है कि मौला, अगर चाहे उसमें भी माशाल्लाह कितना अमल कर लेते लोग बड़ी बात है, जो कुछ कर लेते हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, वरना मौला की सुनते किस मैदान में सुनते हो भाई, मजहबी मैदान में मौला तो बता दो मजहब में कितनी सुनते हो, मजहब में उसकी कितनी पैरवी कर रहे हो, और अगर दुनियावी मैदान में मौला है या दोनों मैदानों में मौला, कैसा मौला है, हर जगह मौला है या बास जगह मौला है, बास जगह मौला नहीं है, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना, हर जगह मौला है ना, जिंदगी के हर शोबे में हमारा मौला है, जब जिंदगी के हर शोबे में हमारा मौला है तो फिर जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करेगा कि नहीं करेगा, लाजिम है ना उस पर हम उसे अपना मौला मांगते, तो हमें साबित करना पड़ेगा कि जिंदगी के हर शोबे में अली हमारा रहनुमा है, हमें और किसी रहनुमा की जरूरत नहीं है, तो कैसे पता चलेगा अली हमारा रहनुमा है, कहां हमारा रहनुमा, वही मौला फरमाता कि हाकिम या निगरान या वाली कि पोजीशन क्या है लोगों के दरमियान में, जैसे तस्बीह के दानों के लिए डोरी, जिसमें आप दानों को पिरो देते हैं ना, तस्बीह के दानों के लिए डोरी, अगर ये डोरी एक बार टूट जाए तो दाने क्या होंगे, बिखर जाए, जब बिखर जाएंगे कोई इनको दोबारा इस टूटी हुई डोरी में जमा नहीं कर सकता, ये जितने भी तहरीफ शुदा मजाहिब हैं यही इनकी सूरत हाल है, इसीलिए ये आज तक कोई सिस्टम देने से कासिर हैं, इसलिए सिस्टम देने से कासिर है कि जब वो डोरी टूट गई दाने बिखर गए जमा नहीं हो सकते, बस उसके मुकाबले में इस्लाम कहीं भी नहीं आया, फर्ज कर ले अगर जगह कुछ जगह नक्शा मौजूद है कुछ हल्की सी झलक नजर आती है, आसार कह रहे हैं कि कोई आने वाला है, किसी के लिए जमीन हमवार की जा रही है, मैं नहीं कह रहा कि मुकम्मल, लेकिन इतना जरूर है कि जमीन हमवार कर रहे हैं कुछ लोग, कैसी स्टेट बना दो कि आने वाले के लिए कोई तो लश्कर हो, कहीं तो लश्कर हो, बल्कि दूसरे भी जगहों से लोग उस लश्कर में शामिल तो हो सके, पहुंच तो हो सके, कोई एक प्लेटफॉर्म तो हो, तो बस ये जो जवाब दिया जा रहा है ना, पूरी दुनिया के तमाम निजामों को एक सिस्टम ललकार रहा है, एक निजाम ललकार रहा है, तो कौन सा निजाम ललकार रहा है, जिसकी डोरी टूटी नहीं है, जिसकी डोरी खदीरे खुम से लेकर आज तक सलामत है, आज तक उसकी डोरी सलामत है, दाने सब एक जगह है बिखरे नहीं, सिस्टम आया या नहीं आया, नाफिज हुआ या नहीं हुआ, डोरी नहीं टूटी, इसलिए वो सिस्टम जवाब दे रहा है दूसरे निजामों को कि निजाम है, इसीलिए पहले नहीं आवाज थी, कमजोर आवाज थी, कुछ लोग आवाज उठा रहे थे, अब दुनिया में कितनी जगह उस निजाम की हिमायत में, उस निजाम के सायबान में लोगों ने कयाम शुरू किया कि नहीं किया, इसीलिए डरता है फिरौन कि मसला मूसा का नहीं है, मसला मेरे सिस्टम के टूट जाने का है, कि सिर्फ मूसा मुझे शिकस्त दे दे तो मसला नहीं, मगर मूसा मेरे सिस्टम को ललकार रहा है, मेरे सिस्टम को तोड़ रहा है, मसला सिर्फ इब्राहिम का नहीं, इब्राहिम को निकाला जाना इसलिए जरूरी है बाबुल से, कि अगर इब्राहिम को ना निकाला तो सिस्टम टूट जाएगा, मसला नमाज का भी नहीं है, रोजे का भी नहीं है, करते इब्राहिम जो इबादत करनी है करो, लेकिन खबरदार जो सिस्टम हमने बनाया है उस सिस्टम को ललकारने की कोशिश ना करना। अपने शहर से लेके अपने मुल्क से लेके पूरी दुनिया में चले जाइए, वही लोग बिल बिलाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं जिनके सिस्टम पे जर्ब लगने लगती है। अल्लाह, हमने 70 साल में एक सिस्टम तरतीब दिया लूट मार करने का, जिसके लोग आदि हो गए। 70 साल में इनको इस नशे का आदि बनाया कि जब तक इन्हें इंजेक्शन ना लगे करप्शन का, इन्हें नींद नहीं आती। ये चिल्लाते हैं, करप्ट लोगों की हिमायत में शोर करते हैं, खड़े हो जाते हैं मैदानों में। हमने इनको इस नशे का आदि बनाया, क्या मैंने लूटते रहे चमकाते रहे, लूटते रहे चमकाते रहे। तुम इस सिस्टम पे वार करने जा रहे हो, फिर वाजे कर रहा हूं किसी हुकूमत की मुखालिफत या हिमायत नहीं समझिएगा, कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। मुझे नहीं मालूम ये जो आज करप्शन के खिलाफ खड़े कल इनका क्या हाल होगा, ये मुकाबला भी कर पाते हैं या नहीं, ये भी इसी सिस्टम में बह जाए, ये इसलिए इसके रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात, आपको वाज़ह है। मुझे क्या मालूम कि ये भी उसी सिस्टम में बह जाएंगे, इनमें इतनी ताकत भी है कि नहीं कि रेसिस्ट कर सके, मुकाबला कर सके इस सिस्टम के मुकाबले में जो 70 साल में चोरों को पालने के लिए मुरतब किया जाए, लुटेरों और डाकुओं को आप पर मुसलत करने के। आप इनके आदि हैं, जैसे हीरोइन के नशे का आदि होता है ना, इनके आदि है, इसी में मजा आता है, यही लोग आ जाते हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, यही आ जाओ, फिर आ जाओ, कातिलों आओ, चोरों आओ, डाकू आओ, आओ लूटने के लिए, लूटने के लिए हम तैयार बैठे, तुम हमें आके लूटो। सामने की बात है, सामने क्या कुछ हुआ हुआ है, तो अब ये क्या करते हैं, 20-25 दिन हुए इसको छोड़िए, आगे पता चल जाएगा अगले साल। तो हिमायत मुखालिफत की बात नहीं, आसानी से समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि चिल्लाएंगे कब, जब सिस्टम पे इन्हें खतरा होगा कि सिस्टम पे चोट पड़ रही है, ये तो हमारे हाथ से मामला निकल रहा है, लिहाजा सारे चोर इकट्ठा, सारे चोर क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, दावत देंगे कि या तो हमारा हिस्सा बन जाओ और या फिर हम तुम्हें खत्म करने के लिए निकल रहे हैं। तो कुफारे कुरैश क्या दावत देते थे, लड़ाई नमाज से नहीं थी, लड़ाई रोजे से नहीं थी, जो अल्लाह का रसूल कहता था कि ये सिस्टम, इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकूंगा, एक इस्तेहसाली निजाम को जिसमें गरीब कुचलता चला जा रहा है, जिसमें गुलाम कुचले जा रहे हैं, जिसमें कनीजें कुचली जा रही हैं, जिसमें तुमने इंसानियत पर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ, इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकूंगा। जब इस सिस्टम के खिलाफ आवाज आई, ये सारे सरदार जिनके 365 मजहब थे, कितने मजहब थे, तवज्जो है ना, परेशान तो नहीं हो रहे आप मेरी बातों से, ओ भाई जो कह रहा हूं मैं भुगतूंगा, आप नहीं भुगतेंगे, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सब 365 मजहब थे, हर एक का मजहब अलग अलग था, लोगों पे अलग अलग डोरे डालते थे, क्यों डोरे डालते थे, मेरी तरफ आओ, कहता था मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ। 365 गुट का मतलब क्या हुआ भाई, 365 खुदा, 365 खुदा का मतलब ये हुआ कि 365 रास्ते, 365 मजहब थे कि नहीं थे, सब एक दूसरे के दुश्मन, सब एक दूसरे के मुखालिफ, लेकिन एक आवाज आई जिसने सिस्टम पे चोट मारी, जिसने कहा नहीं ये लाख हबुल लाख इज्जा मना हबुल ईसा नायला ये शासाफ नायला ये सब के साथ सब बातिल है, ला इलाहा, इनमें कोई भी तुम्हारा माबूद नहीं है, ये तुम्हारे हाथों के तराशे हुए खुदा है, तुम्हारे हाथों के बनाए हुए बुत। लिहाजा आइए फिर आपको वापस लेकर आऊं, ये बातें तो होती रहेंगी। मौला फरमाते हैं कि इंसानों के लिए जरूरी है एक अमीर का होना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो अक्ल क्या कहती है, अच्छे का इंतखाब करूं या बुरे का, भाई किसी भी मुआशरे में, फर्ज कर लीजिए इस्लामी मुआशरा ही नहीं है ना, मुसलमान है ही नहीं वहां पे, तो वहां पे भी अमीर कैसा होना चाहिए, अमीर तो चाहिए ना, तो आफाकी फरमान है ना मौलाना, आफाकी फरमान कि मुसलमानों के लिए नहीं, कितने मुआशरे ऐसे हैं कि जहां मुसलमान नहीं है या अक्सरियत में नहीं है, लेकिन वहां भी अमीर तो चाहिए ना, तो वो लोग कैसे इंतखाब करेंगे अच्छा या बुरा। इसलिए आपको कुछ मुआशरों में अगर अच्छी आवाजें नजर आती हैं, اگر ظلم کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازیں نظر آتی ہیں تو کیا ہے یہ؟ یہ وہی بات مولا کی کہ وہی معاشرہ پنپے گا، وہی معاشرہ آگے بڑھے گا کہ جہاں امیر ان کا اچھا ہوگا۔ مسلمان اور مومن کی تو بات ہی نہیں کی، مسلمان ہے کیا حال ہے؟ دیکھ لیا بر و فاسق، یا نیک یا برا، ایک امیر ہوگا۔ تو اب دیکھیں فاسق حکمران بھی ہیں اور اچھے حکمران بھی ہیں۔ اب یہاں اسلام کا مسئلہ ہی نہیں، بس اچھے حکمران جہاں پر ہیں وہاں سے اچھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ نہیں اٹھتی؟ اٹھتی ہیں نا، نام نہیں لے رہا، آپ خود صاحبان فہم ہیں، اخبار خبریں سب آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور سوشل میڈیا پہ جو صبح سے شام تک نہ معلوم کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، فارورڈ بھی کرتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس خبر کا کوئی سر چشمہ ہے کہ نہیں، تو ممبا ہے چلی کہاں آگے بڑھاؤ۔ وہ بھائی پہلے کہاں سے چلی ہے، کس نے چلائی ہے، کہاں سے نہیں چلنا چاہیے وہ خبر، ٹینشن پھیلے گا نا لوگوں میں، پھیلا اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، بلیک میلر ہے، چور ہے، کون ہے، لیکن میں ٹینشن پینک پھیلا لوگوں، اپنا مقصد حل ہونا چاہیے، قوم میں پینک پھیلنا چاہیے، صبح ہو اور ایک ٹینشن کے لیے نئی چیز ان کے لیے تیار ہونی چاہیے، یہ ہو جاؤ بھائی فلاں جگہ سارے پہنچ جاؤ، چلو پہنچو، پیچھے بلیک میلر ہے، پیچھے کوئی چور ہے، پیچھے کوئی مشہور و معروف فراڈیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، اس سے غرض نہیں، مولوی صاحب ہی ہو گیا، چلو وہاں چلو فلاں جگہ چلو، ان کے فراڈ بچانے کے لیے ہم استعمال ہوں، اتنے تو بے وقوف نہیں، 40 سال میں بہت کچھ سیکھ لیا، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، نہیں سر اس سے بہتر انداز بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، پہلے تو یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ سسٹم چاہیے، اچھا ہو یا برا، فاسق ہو یا فاجر، اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بدنام ہو، ایک امیر ہوگا، ایک امیر کے بغیر کام نہیں چلتا، سسٹم چاہیے، ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ایک نگران چاہیے، اگر وہ نگران ہٹے گا تو تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے، ایک رہبر ایک رہنما ہونا چاہیے، تو کیسا ہونا چاہیے بھائی، کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اچھا یا برا، تو عقل انسانی کیا کہے گی کہ بھئی اچھا، اچھوں میں اور اچھا، ان میں اور اچھا، اور اگر ایسا ہو کہ جس سے خطا کا کوئی امکان ہی نہ ہو، جس کا اپنا کوئی مفاد نہ ہو، دیکھیں نا جو بھی سسٹم بنائیں گے انسان، پاکستان نے چلیے اچھا سا سسٹم بنا لیا تو پاکستان ان لوگوں کو پیش نظر پہلے رکھا جائے گا نا، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کا موسم، یہاں کے مزاج، یہاں کے رنگ و نسل، یہاں کی قومیں، یہاں کی زبان، یہاں کے صوبے، سب تو پوری دنیا کے لیے تو بہتر نہیں ہوگا، یا اور کہیں وہ بڑا اچھا بہت اچھا سسٹم کسی نے بنا لیا اور چلا رہا ہے مثلا کسی ملک میں، تو وہ سسٹم وہاں کے لوگوں کے حساب سے یہاں تو نہیں آ سکتا، کیونکہ عقل انسانی محدود، اسی لیے کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، سیاسی جماعتوں میں تو خیر تاریخ بھی چھوٹی سی ہے، چند 100 سال کی ہے، 200-300 سال، 400 سال، اس سے پہلے پارٹیاں وارٹیاں تو تھی نہیں، تو ان پارٹیوں کی عمر کتنی ہے بھائی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد پارٹیوں کی چھٹی، بدل گئے نام بھی، بدل گئے لیڈر، بدل گئے رہنما، بدل گئے، اسی لیے یہ ناچیز برسوں سے چلا رہا تھا کہ پارٹیوں کے پیچھے جانے نہ دو، حسین کی پارٹی میں رہو، کیوں پارٹیوں کے پیچھے چلو گے، کیا ہوا، اب جتنوں نے جانے دی تھی ان مال والوں نے سب گیا، فالتو سب خون کا ہاتھر چلا گیا، کیوں بعد میں پتہ چلا تو لٹیرے تھے، وہ تو قاتل تھے اور چھٹی بھی ہو گئے، ان کے فارغ ہو گیا، لیکن جو آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، جب بھی علی کی محبت میں مارا گیا، بتاؤ کیا اس کا خون ضائع گیا، اس کے ورثہ کو افسوس ہوا کہ کیوں مر گیا، خامہ خامہ میرا نہیں افسوس ہوا نا، فخر ہے ہمیشہ کے لیے، فخر ہے ان کے لیے کہ ہاں بھائی حسین کے نام پہ گیا، شرمندگی کیسی شرمندگی ان کو ہو جو دنیا کی رہبروں کے پیچھے مارے جاتے ہیں، اس لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ مولا کون بہتر ہے، رہنما کون بہتر ہے، جو یہاں بھی رہنما ہو وہاں بھی رہنما ہو، یہاں بھی اس کی حاکمیت پر ہمیں فخر ہو، قیامت کے دن بھی یہی اعلان ہو کہ تیرا امیر کون، تو ایک ہی نام زبان سے نکلے گا کہ میرا امیر وہی ہے معبود جس سے تو نے امیر المومنین بنا کر بھیجا،
یا یا Yeah.
बेटा आपका हक मारा गया, आप अब इत्मीनान से नारे लग गए, मिक्स हो गया था सर, बिस्मिल्लाह बेटा,
जिंदाबाद।
बात यह कि आप जानते हैं मुझे नारे लगवाने का कोई शौक वोक नहीं है, लेकिन वो बेचारा बड़ी मेहनत से नारे लगा रहा था, दूसरे के नारे में उसकी आवाज दब गई, जिससे उसका हक उसको मिलना जरूरी था। मिलकर तमाम मोमिन की सेहत और सलाम के लिए बाबा से बुलंद एक नारे सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस ये यहूद और नसारा क्या चाहते हैं, वही बात को रखेंगे जहां कल हमने छोड़ा था। वकालु कुनु हूदन व नसारा, एक ही बात में तुम्हारी नजात है कि तुम या यहूदी बन जाओ या मसीही बन जाओ, और कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास, मुशरिक ना बनो, हालांकि ये भी शिर्क की तरफ ये सारे काम, लेकिन वो कहते हैं चलो तुम्हें अल्लाह का मजहब मानना है, तुम भी मुसलमान क्यों हो रहे हो, इस्लाम की तरफ क्यों जा रहे हो, तुम क्या बन जाओ, या यहूदी बन जाओ या मसीही बन जाओ, तहतदू तुम्हें हिदायत ही हिदायत मिल जाएगी, मसीही हो गए तो देखो यहूदी हो गए, अच्छा अब तो यहूदी कबूल भी नहीं करते अपने, वो मुसीबत ये हो गई कि कोई यहूदी बन ही नहीं सकता, यहूदियों ने तो दायरा बना के ताला लगा दिया। कोशिश तो हमारी यहां भी हो रही है कि इतनी गालियां दो कि कोई आने की सोचे भी नहीं, इतना बुरा भला क्या है, तो ये दायरे हमारे यहां नहीं बनते, हमारे यहां बंद नहीं होता दायरा, हमारे यहां हर वक्त आगोशें खुली हुई, हाथ फैले हुए, दरवाजे खुले हुए, हुरों के लिए दरवाजे खुले हुए, बंद करने की कोशिश ना करना, बात जगह की जा रही है कोशिश, तो बंद कहां गया, यहूदियों के पास जो है वो है, अब कोई दूसरा इसमें दाखिल नहीं हो सकता, खत्म हो गया किस्सा, तो अब यहूदी तो बन नहीं सकते, ईसाई मसीह ही बन जाओ, तुम्हारी नजात इसमें, मसीह नहीं बनते तो मुशरिकीन से क्या कहते थे यहूद नसारा मुसलमानों की दुश्मनी, कि भाई तुम्हारा दीन बेहतर है, और आज भी ऐसे ही है ना, बुत परस्त उनको ज्यादा अजीज है, हालांकि आसमान से रिश्ता जोड़ते हैं, यहूदी भी और मसीह भी आसमानी मजहब है, आसमानी मजहब होने के बावजूद कितना डरते हैं इस निजाम से, क्योंकि जानते ना कि इसमें कुव्वत है, इसमें ताकत है, बेशक नाफिज नहीं, लेकिन जानते हैं कि जब मौका मिलेगा निजाम नाफिज होगा, निजाम खाली नमाज रोजा नहीं, निजाम नाफिज होगा, उस निजाम का रास्ता रोकने के लिए अगर मुशरिकीन से मिलना पड़े, बुत परस्तों से मिलना पड़े, मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तीनों ने हाथ में हाथ डाल दिया, सबके सब मुत्तहिद हो गए कि नहीं हो गए, तो बस इसका मतलब क्या हुआ कि इस्लाम में कोई ताकत है, कोई कुव्वत है, कोई सिस्टम है जो पूरी दुनिया में नाफिज होने की कुव्वत रखता है, इसीलिए जो आखिरी मारिका है वो नमाज के लिए नहीं होगा, वो रोजे के लिए नहीं होगा, वो पूरे सिस्टम के लिए होगा, यानी जुल्म और जबर के सिस्टम की जगह अदल और इंसाफ का सिस्टम लाया जाएगा, ऐसे ही है ना, वो आने वाला क्यों आ रहा है कि जुल्म और जोर की जगह, जुल्म और जबर की जगह अदालत को कायम करते, अदालत को नाफिज करते, ऐसे ही है, इसीलिए आएगा वो आने वाला। बस आप जवाब दीजिए रसूल, कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ऐ रसूल आप कह दीजिए यहूदियों नसरानी जो हमें दावत देते, तो सुनो कि बस सही दीन सही रास्ता कौन सा है, वही है जो इब्राहिम हनीफ का रास्ता है, हर बातिल से कतरा के गुजर जाने वाला इब्राहिम, वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिकीन में से नहीं थे, वो मुशरिक नहीं थे, लिहाजा मिसाल ही उनकी दी जाती है, क्योंकि यहूदी भी मानते हैं और मसीही भी मानते हैं, उन जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिसाल उन्हीं की दी जाती है, वमा काना मिनल मुशरिकीन, ये मुशरिकीन में से नहीं थे, ये शिर्क नहीं करते थे, शिर्क क्या है, शिर्क क्या है, बुतों को पूजना, बुतों के सामने सर झुका दिया, शिर्क हो गया, अरे वो तो खत्म हो गया, पता नहीं कब का जमाना हो गया, हाँ आप कहिए जहां पे बुत परस्त हैं वहीं होता होगा, बाकी तो कहीं नहीं होता, नहीं शिर्क सिर्फ ये नहीं कि इंसान बुतों के सामने सर झुका दे, नहीं चलते फिरते बुतों के सामने सर झुकाना भी शिर्क है, ये ज्यादा बड़ा शिर्क है, ये ज्यादा बड़ा शर्त, चलते फिरते बुतों के सामने, ये जो इंसान ने ताकतों को तराशा है ना, बड़ी बड़ी ताकतों को तराशा है, इनके सामने झुक जाना, जबान से कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से कहता रहे अल्लाह अकबर, और भी जबान से पता नहीं क्या क्या कहता है, कहता रहे लगाता रहे नारे, लेकिन जुल्म के सामने झुक रहा है, जुल्म की मदद कर रहा है, जुल्म का कुव्वत बाजू बन रहा है, तो उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, ना अल्लाह से ताल्लुक है, ना रसूल से ताल्लुक है, ना अली से ताल्लुक, ना हुसैन से ताल्लुक, ना करबला से ताल्लुक है, करबला जुल्म इस्तिबदाद के खिलाफ है, करबला सिस्टम के खिलाफ है, वो एक साहब हमारे साथ कहीं बैठे हुए थे किसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि हुसैन की फेवर में बात कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन मुंह से एक जुमला निकला, अच्छा वो खुदा ना करे मैं ये ना समझेगा कि नफ्स करो नहीं कि इस्लाह करना जरूरी था मेरा। उनका क्या हुसैन की बगावत, बार बार कहो हुसैन ने इसलिए बगावत, तो मैंने इस्लाह की, मैंने भाई कह के भी नहीं की ना बात कर दी कि हुसैन बागी नहीं है, बागी यजीद है जिसने दीन से बगावत की है। हुसैन तो वो हाकिम है, वो हाकिम कि दुनिया माने या ना माने हुसैन हाकिम है। अगर हुसैन हाकिम ना होता तो अपने सिस्टम को बचाने के लिए निकलता ना। क्या फरमाया हुसैन ने, लौकाना दीन मोहम्मदी, अपनी बात नहीं है, लोगों की बात नहीं है, बात है दीन मोहम्मदी की, बात है उस दीन की। अगर ये खतरे में है तो हुसैन अपने आप को तलवारों के हवाले कर देगा। उस दीन को, उस सिस्टम को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, जो अल्लाह की तरफ से हाकिम हकीकी है। हाकिम हकीकी हुसैन है, जो दीन के खिलाफ खड़ा होगा बागी वो होगा। लिहाजा हुसैन उस बगावत का जो दीन मोहम्मदी के खिलाफ हो रही थी, उस बगावत का सर कुचलने के लिए निकले थे, इसीलिए रास्ता तवील करते जा रहे थे। मक्के गए, कई महीने रहे, क्यों रहे कई महीने? लोग सारी दुनिया से आते हैं ना मक्के में, उम्रे के लिए आते, ज़ियारत के लिए आते, ताकि हर एक को पैगाम पहुंचा दिया जाए, अमल करे या ना करे। ये कोई नहीं कहे कि बातिल के निजाम के मुकाबले में कोई हक का निजाम पेश करने वाला नहीं था। अल्लाह की तरफ से जो हाकिम था उसने हुज्जत तमाम की, जहां तक पैगाम पहुंचा सकता था रास्ते में पहुंचाता रहा और बगावत का सर कुचलने के लिए कर्बला के मैदान में पहुंचा। आप मुझे कहने दीजिए, बल्कि मुझे बताइए कि हुसैन ने बगावत का सर कुचला के नहीं कुचला? ऐसा कुचला कयामत तक के लिए बाहियों के सर हुसैन ने कुचल के रख दिए, अपने खून की आबियार, खून से आबियारी की, दीन को बचाया, इस्लाम को बचाया। कयामत तक के लिए इस्तिब्दाद, आमरियत, डिक्टेटरशिप, जल, जब इन सब को, मुलुकियत की जड़ों को उखाड़ के फेंका, ऐसा हमला किया कि वो लानत बन गए। हुसैन जिस दीन के लिए लड़ रहा था वो दीन बाकी रहा। लोगों को क्या अंडों से पैदा होने वाले जमुरी चूजे, आमरियत ने जो अंडे दिए ना सबको पूरी तारीख उठा के देख ला, जितने शोर मचाने वाले जब हम उन आमरों के खिलाफ आवाज उठाते थे, ये वो अंडे बच्चे हैं, समझ गए? आमरियत ने जो अंडे दिए थे ना उसमें जमुरी चूजे निकले, सारे में शोर कर रहे हैं, सबके सब वही। अपना माजी तो देखो, अपनी तारीख तो देखो, किसी को एक डिक्टेटर ने पाला, किसी को दूसरे डिक्टेटर ने पाला। हम कभी धोखा नहीं खाने वाले और कभी धोखा खाया भी नहीं, क्यों? हम जानते हैं कि इजहार राय की आजादी और इख्तियार और जमहूरियत किसे कहते हैं। आओ, अब मसायब नहीं पड़ रहा, बता रहा हूं आपको कि दीन हनीफ में कितना इख्तियार है, कहां तक इख्तियार है दीन हनीफ में, क्यों है ये बातिल से कतरा के चलने वाला, बातिल से मिलकर कैसा दीन, बातिल से मिलकर कैसा इस्लाम, बातिल से मिलकर कैसी हुसैनियत, बातिल से मिलकर कैसा नारा हैदरी। बातिल की आमिजश नहीं होनी चाहिए इसमें से किसी भी चीज में, बातिल मिल गया खत्म हो गई बात, उन्हीं के खिलाफ तो सारी लड़ाई है। इस सिस्टम के परवरदा लोगों के साथ, इस सिस्टम को चलाने वाले लोगों के साथ, यही तो हुसैनियत की लड़ाई है। पूरी दुनिया में हुसैनियत भी तो लड़ रही है, और कौन लड़ रहा है? कोई लड़ रहा है इस सिस्टम के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ जो इंसानियत पर मुसल्लत है? फिरौनों का निजाम, शैतानों का निजाम, नमरूदों का निजाम, कौन लड़ रहा है उसके खिलाफ? सिस्टम की लड़ाई है, पूरी दुनिया में एक ही जंग चल रही है। आओ तुम्हें बताएं क्या है। सब्ज बाग दिखाते हो ना, पूरी दुनिया को ये सब्ज बाग दिखाते, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे वोट दे दो, इसे वोट दे दो, उसे वोट दे दो, उसे वोट दे दो, ऐसे है। और फिर उसके बाद फिर आपको मालूम, फिर उसके बाद फातिहा, खत्म, किस्सा हो गया, काम इशारा कर दिया, बस काफी। ऐसे है ना, लालच है ना, लालच के बगैर कौन वोट देगा भाई, चाहे उसी वक्त की लालच हो, चल भाई अभी ले ले जो लेना है, पांच साल मत बोलना, एक वोट इतने का है जी। इंटीरियर सिंध हो या इंटीरियर पंजाब हो या इंटीरियर केपीके हो या इंटीरियर बलूचिस्तान हो, कहीं का भी इंटीरियर हो, अपनी आंखों से इस गुनाहगार ने सब देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, और उनके लोग सुनेंगे तो शोर भी मचाएंगे, ये क्या करा मौलवी साहब, ये क्या करे मौलवी साहब, तो मुझे तो कोई परवाह है नहीं, मैं तो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, कोई ये ना कह के किसी ने बताया नहीं था, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इन लुटेरों के खिलाफ बात कर देता और इन जमीर फरोशों के खिलाफ बात कर देता, वहां तो कीमत लगती है उसी दिन। पांच साल क्या हुआ भूल जाओ, अभी कितने का वोट देगा बता, कितने घर में तेरे अपराध है, पांच वोट है, इतने के हैं पांच वोट, सब जानते हैं आप, सबको खबर है जो मैं कह रहा हूं, बस उनमें कहने की हिम्मत है, किसी में कहने की हिम्मत नहीं, बल्कि बाद में तो सुनने की भी हिम्मत नहीं। तो मैंने खुद देखा है बोलियां लगते हुए, और बोलियां लग रही इतने वोट इतने के, इतने वोट इतने के, उसके बाद जब कीमत ले ली, आप क्या भाई पांच साल जो भी करे तुम्हारे साथ, कर तो कीमत दे देना, तो यहां तो ये है, या उसी दिन ले लो या थोड़े दिन बाद ले लो, जितनी बड़ी तुम्हारी जमीर बेचने की ताकत है उतने हिसाब से बिकेगा, उसी हिसाब से जमीर को बेचा जाएगा, ऐसे ही ना। तो लिहाजा ये है सिस्टम सारा जिसमें हम रह रहे हैं, कीमत लगती है भाई, इतनी कीमत, उसके बाद फारिग हो गया, जो कहना था कह दिया, लेकिन आई लालच दी जाती है ना, चाहे उसी वक्त के लिए, चाहे पांच साल के लिए लालच देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं, ये थोड़ी है जमहूरियत। आओ मैं तुम्हें रुख दिखाऊं जमहूरियत कहते किसे, यानी जमहूरियत का तो लफ्ज अभी की पैदावार है, ये तो मैं मजबूरन इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं तो निजाम की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अल्लाह जिन्हें अपना नुमाइंदा और बना अपनी तरफ से हाकिम मुकर्रर करता है वो क्या होते, और उससे बड़ी मेरे पास मिसालें नहीं, खुदा के रसूल ने जब इस सिस्टम पर वार किया, हमला किया, लोगों को कोई लालच दी नहीं, हाँ आखिरत का जरूर बताया कि आखिरत में ये मिलेगा, आखिरत में कयामत के दिन, और हम लोग कहां वादे फरदा पे इत्मीनान करने वाले लोग हैं भैया, हम कहां वादे, अभी बताओ भाई कयामत में क्या रखा, कयामत में कितने देखे, हाँ किताब में पढ़ा है, अकीदा है, उसूल दीन में मियाद मालूम है, याद है, लेकिन ये सारी बातें भैया ये अपने पास रखो मौलवी साहब, आखिरत आखिरत यहां बताओ क्या मिल रहा है, इधर बताओ, उधार का सौदा नहीं चलेगा, उधार का सौदा नहीं चलेगा, नक्द की बात करो, किसका कौल है ये, किसका अमल है ये, याद आ गया ना, याद आ गया, जिनको नहीं याद आया, जिनको याद आ गया उनको बता देना, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है, चलिए एक इशारा दे दूं, रे की सल्तनत अभी मिल रही है, जन्नत का वादा उधार है ना, अब समझ में आ गई बात, अभी की बात करो मौलवी साहब, आखिरत को छोड़ो, अभी क्या मिल रहा है, तो ये सोच लेना कि जो ये सौदा करते हैं तो ये क्या है, सौदे का पस मंजर है क्या, नकद क्या होता है और उधार क्या होता है, ऐसे ही है ना। तो बस जब ये मैदान में आएंगे अंबिया पैगंबर रसूल, तो ये वादा फर्दा थोड़ी करेंगे, ये थोड़ी करेंगे लालच कि ये ले लो, ये ले लो, ये मिलोगे, नहीं, ये पहली दावत यही देंगे कि ला इलाहा, सबकी एक दावत होगी, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, तौहीद पर बुलाएंगे सबको, दावत देंगे तौहीद की, दीन इसी के गिर्द घूम रहा है, दीन इसी के गिर्द घूमेगा, इसी के गिर्द घूमेगा, पहला उसूले दीन में पहला मरहला किस चीज का है, तौहीद का, और ये फुरूए दीन का मसला नहीं है, ये किसका मसला है, उसूले दीन का, उसूले दीन में तकलीद है नहीं है ना भाई, अरे मत घबराइए, तकलीद थोड़ी करा रहा हूं, मैं कह रहा हूं तकलीद नहीं है, तकलीद करने से डरते हैं ना, मैं कह रहा हूं तकलीद नहीं है, उसूले दीन में तकलीद नहीं है, हमारे यहां उल्टा हिसाब है, हमारे यहां उल्टा हिसाब, उसूले दीन में तो तकलीद है, अम्मा अब्बा मुसलमान मैं भी मुसलमान, अब्बा अब्बा मोमिन मैं भी मोमिन, इतने दो इशारे काफी, ठीक है ना, उसमें भाई कौन इतनी दलीलें ढूंढे, कहां से ढूंढे, इधर ढूंढे, साइंस पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है और पीएचडी कर रहा है, हर चीज में दलील चाहिए, हर चीज में दलील चाहिए, लेकिन अल्लाह के लिए दलील कौन ढूंढे भाई, अरे भाई छोड़ो भाई, ठीक है अम्मा अब्बा ने कह दिया अल्लाह एक है, एक है, मौलवी ने कह दिया अल्लाह एक है, एक है, हां भाई ठीक है अल्लाह एक है, मान लिया, हालांकि वहां तकलीद हराम, उसूल दीन में तकलीद, खुदा के बंदो उस बुढ़िया जाहिल बुढ़िया से भी गए गुजरे हो गए, उस बुढ़िया से भी गए गुजरे हो गए, ये बड़े बड़े साइंसदान, ये बड़े बड़े दानिशर उस बुढ़िया से भी गए गुजरे हो गए। उसूल दीन के मामले में अम्मा अब्बा है तो हम भी हैं, उसी पे चल रहा है। उस बुढ़िया से भी गए गुजरे हो गए, वो जाहिल बुढ़िया तो चरखा कात रही है, तो उसे पूछा भाई अल्लाह का हाल लायक है अल्लाह एक है, कैसे तू जान दिया अल्लाह एक है? कहिए ये चरख देख रहा है ना, रही चरख ये इसको चला रही हूँ तो चरखा कात रही चल रहा है ना, तो ये मेरा जब चरखा नहीं चल सकता बगैर मेरे चलाए तो कायनात का निजाम कैसे चलेगा बगैर अल्लाह के, कोई चलाने वाला है ना? तो इतनी दलील तो रखो भाई, तो इतने उसूल दीन का मामला है, फुरू दीन का मामला थोड़ी है। उसूल दीन में तकलीद नहीं है, फुरू दीन में तकलीद है। तो फुरू दीन में तकलीद नहीं करना, सारा जोर किस में है? फुरू दीन में तकलीद नहीं करना, सियासी मसला है, सियासी समझ गए? किसी को नहीं पता दीन का मामला क्या है, सब लोगों को लगाया हुआ है, क्यों जानते हैं कि इस तकलीद के मसले में है क्या? इस तकलीद के मसले में तो सारी दुनिया को परेशानी है कि जो जिसकी तकलीद कर रहे हैं यही तो वो नाइब इमाम है, जो इमाम जिसको अपनी नियाबत देकर गया है, नियाबत आम्मा देकर गया है, इमाम बर्दे गैबत में लावारिस छोड़ के नहीं गया, दीन के मुहाफिज को किसको? हाफिजन ले दीन ही, ग्यारहवें इमाम ने इन नाइबीन इमाम के लिए फरमाया जब पहचानना हो तो मुसीबतों के जमाने में पहचानना कि ये दीन के मुहाफिज बन के पूरी दुनिया के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। अब समझ में आया कि तकलीद का मसला वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इसके पीछे वो सारी ताकतें लगी हुई हैं, जिन्हें जर्ब लगी है, जिन्हें आप शिकस्तों पे शिकस्त हो रही है, इस तकलीद के हाथों, इस मर्जियत के हाथों, क्योंकि वो दीन के मुहाफिज हैं। इनसे ये तो पूछो कि जब दीन पर वक्त पड़ता तुम कहां होते हो, कहां छुप जाते हो? बड़ी बड़ी बड़कें, बड़े बड़े, अब ये लफ्ज क्या करूं, माजरी से पढ़ने हर इलाके में जाता हूं, एक दो लफ्ज हर जगह की सीख लेता हूं, माफ कर दीजिएगा, सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, क्या करूं, बहुत बहुत बचाने की कोशिश करता हूं जबान को, लेकिन वो कहीं ना कहीं जबान स्लिप हो जाती है, क्योंकि जाहिर है कि हर इलाके में जाना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो एक दो लफ्ज सीख लिया आ जाते हैं, जबान पर चढ़ जाते हैं, क्या किया जाए, आम हुए जबान सदी आम हो जाते हैं वो लोग। खैर तो समझ में आया मसला क्या है, क्यों तकलीद के पीछे पड़े हुए? नहीं करना, नहीं करना तो तेरी क्यों करूं, जब तकलीद नहीं करनी तो तेरी क्यों मानूं भाई, और जब मानना ठहरा तो फिर उसकी क्यों ना मानूं जिससे अमेरिका कांपता है, और जब मानना ठहरा तो उससे क्यों ना मानूं जिससे इसराइल लरसता है, जब मानना ठहरा तो उससे क्यों ना मानू जिससे उसके सारे हवारी खौफ खाते, फिर उन्हीं की मानू ना, जब मानना ही ठहरा, नहीं मानना तो तेरी भी नहीं मानता, अगर तेरी मान ली तो मैं तेरा मुकल्लिद हो गया ना भाई, हो गया ना मुकल्लिद, तेरी मान ली तो मैं तेरा मुकल्लिद हो गया, तेरी क्यों मानू जबकि मुझे पता है तेरी इल्मी हैसियत क्या है, तेरी कौमी हैसियत क्या है, तेरी कुर्बानियों की तारीफ क्या है, तू तो कुर्बानियों को जाया करने के चक्कर में रहता है, तुझे तो भेजा इसीलिए गया, तुझे तो छोड़ा इसीलिए गया है, एक ही काम है, मोमिनों को लड़ा, मुसलमानों को लड़ा, इस जबान के जरिए से जो करना करो, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? जिसने मुहाफिज बनाए हैं ना वो जानता है, ये मुकाबला ही तो बता रही है, ये मुकाबला ही तो बता रहा है कि पर्दे में जाने से पहले उसने दीन के मुहाफिजों को ऐलान किया कि दीन के मुहाफिज होंगे, जो साम्राज्य के दोस्त रहे वो दीन के मुहाफिज नहीं, जो साम्राज्य के मुकाबले पर खड़े वो दीन के मुहाफिज, किस दीन के? वो दीन जो तमाम मुश्किलात का हल रखता है, फिर ये किताब नाफिज कहां होगा, किधर होगा, नहीं होगा ना, है तो सही, सरेंडर तो नहीं किया उस दीन के मुहाफिज, मैदान में तो है ना, जमीन तो हमार करके, आखिर तो वही दीन आएगा, ये ज़हरा वाला दीन है कुल्ले, ये दीन गालिब आएगा ना आखिर में, सब पर गालिब आएगा, तो कौन सा दीन होगा, निजाम होगा ना, या सिर्फ कुछ अहकाम होंगे, नहीं, उसूल दीन का तकाजा है कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करो तौहीद के लिए, अदालत के लिए, नबुवत के लिए, इमामत के लिए, मैयाद के लिए, अकली मसले, अकली अक्ल से समझो कि एक रहनुमा का होना जरूरी है, एक इमाम का होना जरूरी है, एक अमीर का होना जरूरी है, तो कैसा अमीर हो, दुनिया का बनाया हुआ या अल्लाह का बनाया हुआ, कैसा इमाम होना चाहिए जो हर मसले में तुम्हारी रहनुमाई करे, या ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ सियासत में रहनुमाई करे, लूटमार में रहनुमाई करे, चोरी चकारी में रहनुमाई करे, बस ऐसा होना चाहिए या चलो अच्छा होगा अच्छी बातों में रहनुमाई करे। लेकिन नहीं, अमीर कैसा होना चाहिए? अक्ल कहती है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि जिससे खता का इम्कान ना हो। क्योंकि अगर खता का इम्कान हो, देखिए क्यों है मासूम ये इमाम, ये दीन का मुहाफिज मासूम क्यों है? अगर खता का इम्कान हुआ तो किसी भी फेल के बारे में मुझे नहीं पता कि अमदन हुआ या सहवन हुआ, ये खता हुई है या सही हुआ, हमें क्या मालूम, हमें तो नहीं मालूम। लिहाजा सबसे पहली चीज क्या है, वो इमाम वो रहनुमा क्या होना चाहिए? मासूम अनिल खता। उससे जब खता का इम्कान ही नहीं तो फिर वो जो भी कहेगा वो दुरुस्त होगा। ऐसे ही है, बस बात कर रहा था लालच की। जितने भी निजाम है लालच देंगे ना, हर कोई लालच देकर आएगा, बाद में उसे एहसास होगा ओहो ये तो मसाइल दूसरे हैं भाई, मसाइल संगीन है। अब आप मुद्दत आगे बढ़ते जाओ, 3 महीने में बिजली खत्म होगी, लोड शेडिंग यानी बिजली खत्म। वैसे असल मसला यही है कि 3 महीने में खत्म होगी। वो मैं गलती से सही बात कह गया, लेकिन कहना मैं ये चाह रहा था कि 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म होगी, मगर गलती से सही मुंह से निकल गया कि 3 महीने में बिजली खत्म होगी। 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म होगी, फिर जब आए तो पता लगे नहीं वो तो 6 महीने लगेंगे, फिर थोड़े दिन बाद दो साल लगेंगे, लगा 5 साल तक, नहीं अभी 25 साल। कितने चाहिए? 25 साल तक, जब तुम्हारा खून निचोड़ लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सिवाय खाल और हड्डियों के, फिर इम्कान है कि तुम्हारी तीसरी चौथी नस्ल जाके कोई कुछ देख ले, पता नहीं क्या देख ले। तो साधु ने तो ये आने वालों को बताऊं कि आने वाले इसी तरह आते, जब आते हैं तो फिर उन्हें अंदाजा होता है कि ये क्या हुआ। लिहाजा जो इलाही नुमाइंदा होगा वो कभी ये लालच नहीं देगा, जब बुलाएगा कुर्बानी के लिए बुलाएगा कि मेरे साथ आओगे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेरे साथ आओगे जलती रेत पर घसीटा जाएगा, मेरे साथ आओगे गर्म पत्थरों पर लिटाया जाएगा, मेरे साथ आओगे नैजे और बर्छियों के वार होंगे, मेरे साथ आओगे तुम्हें दिन भर हंटरों का, कोड़ों का, ताजियानों का सामना करना पड़ेगा। अरे ताजियाने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसका माना है कोड़ा या हंटर। जो हम कहते हैं ताजियाने बरसाए, तो लोग बच्चे परेशान होते, मुझसे एक से पूछा कि ताजियाना भी तबड़ा कैसे बरसेगा, ताजिए कैसे होते थे, उन्होंने ताजिया बरस रहा है। नहीं, इसमें क्या कहते हैं ताजियाने, किसे कहते हैं ताजियाना? कोड़े को, हंटर को, ये होता है ताजियाना। तो ताजियाने बरसेंगे तुम पर, ये होगा हर नबी ने, हर पैगंबर ने, पैगंबर की मर्तबत ने भी। दावत का महवर क्या है? यही कि हाँ अल्लाह के यहाँ तुम्हारा अमल महफूज है, लेकिन मेरे साथ आओगे ये सब कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तो कितने लोग आए? चंद लोग। खुदा ना करे अल्लाह के रसूल ने ये तो नहीं कहा कि मैं अभी हाकिम हो जाऊंगा, अभी मक्के का सदर बन जाऊंगा या सरदारी मेरे हाथ में आ जाएगी, तो हालांकि सब लालच है तो उन लोगों ने दी रसूल को, ये दी ना सर कि आप सरदार बन जाइए, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, जो आप चाहते हो। फिर आप जानते हैं, पढ़ते रहते हैं क्या क्या, कितने किस्म के हुजूर के सामने उन्होंने ऑफर्स पेशकशें रखी थी, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन ये दावत से हाथ उठा लीजिए, अच्छा जो करना कीजिए, लेकिन लोगों में जाके ये बात ना कीजिए, लोगों में बात आप मजमे में ये बात ना कीजिए, आप अपने ख्याल को अपने तक रखिए, ये जमहूरियत के खिलाफ है कि आप सबके सामने बोलना शुरू कर देते हैं ऐसी बातें जो सबके सामने करना नहीं चाहिए। अब हम नास की बातें ना बताया करो, आप बताना शुरू कर देते हैं, ये जमहूरियत के खिलाफ है, जमहूरियत के उससे बड़ा खतरा है। और जमहूरियत के खतरे का मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब कोई सियासतदान चिल्लाए ना कि जमहूरियत को खतरा, तो समझ जाओ किसको खतरा है, समझ जाओ कि खतरे में पड़ गया इसका लूटमार का सिस्टम, इसको जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है, मतलब ये कि इसका सिस्टम लूटमार का खतरे में आ गया, खतरे में। तो ये याद हो, वैसे आप लोग समझ नहीं मिलेगी कि जमहूरियत में खतरे का मतलब वही है जो मैं बता रहा हूँ। लुगत में भी आइंदा ये लिखा जाएगा कि जमहूरियत में खतरे का मतलब ये होता है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए ये एक मिसाल कि अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह के बनाए हुए भेजे हुए दीन की तरफ दावत दी, कोई लालच नहीं दिया। हाँ ये बात जरूर है कि जब ये सिस्टम आ जाएगा तो गुलामों के लिए, गुलाम होने के बावजूद राहत है। आप कहेंगे साहब गुलामों को खत्म कहा गया, गुलामी के सिस्टम को खत्म ही नहीं कर सकते थे रसूल, क्यों खत्म करते? भाई उस जमाने में अगर एक बार ऐलान कर दिया जाता कि सारे गुलाम आज से आजाद के नीचे आजाद, सिस्टम तबाह हो जाता, खराब हो जाता। जैसे आज होता है ना, कभी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करो उल्टा ही हो जाता, उल्टा हो जाता ना, क्यों? पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है ना, बिगड़ा हुआ कैसे सही होगा? अगर गुलामों करीदों को एक साथ लाखों गुलाम करीद आजाद हो जाएं, वो बेचारे कहां जाएंगे, कहां काम करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? क्योंकि कम से कम उनके खाने पीने की रिहाइश की जिम्मेदारी तो आका पर है ना उनके। अब सब आका निकाल देंगे गुलामों करीदों को, जाओ जो गुलामों करीद कहां जाएंगे? तो मोहल्ले मोहल्ले में खराबियां पैदा होंगी कि नहीं होंगी, शहरों में खराबियां पैदा होंगी, कहां ले जाए उन लाखों को? लिहाजा रफ्ता रफ्ता स्टेप बाई स्टेप गुलामों के हुकूक बताने शुरू किए। अब सुनिए, इतना तो लोग जानते हैं कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलाम भेजिए मोहम्मद अली। आइए, जिंदगी कैसे गुजारी? फक्र और फाके के साथ, ऐसे ही है ना, इसी तरह गुजारी। लिबास की हालत आप जानते हैं, गिजा की कैफियत आप जानते हैं, नालैन की कैफियत आप जानते हैं। आम तासुर यही है, आम कुछ लोग पढ़े लिखे जानते हैं बात को, आमी तासुर है कि मौला के पास कुछ था ही नहीं। जब मौला के पास कुछ नहीं था तो ये मौर्खीन और मुहद्दिसीन क्यों लिखते हैं ये बात कि अली ने अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत से 400 गुलामों को आजाद किया। कितने? 400 गुलामों को आजाद किया। रहना उस हालत में, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अली जाहिरी हाकिम भी है बातिनी हाकिम भी है, किसी गरीब को यह एहसास ना हो कि मेरा मौला, मेरा अमीर, मेरा हाकिम इतनी शान से रहता है और मुझे तकवा की तालीम देता है, मुझे कहता है पानी कम इस्तेमाल करो, मुझे कहता है पानी बचाओ, मुझे कहता है ये बिजली बचाओ, मुझे कहता है बिजली कम खर्च करो, मुझे कहता है खाना कम खाओ, मुझे कहता है आटा कम इस्तेमाल करो, मुझे ये सब कहता है। और खुद की क्या हालत है भाई, देखा है ना आपने, समझाने की जरूरत तो नहीं, तफसील में जाने की जरूरत तो नहीं, आपको मालूम है ना कैसे रहते हैं हुक्मरान। तो अली ये ना समझिए कि माली तौर पे ज़ईफ है अली, वो खुदा के बंदे, आज तक वो बाग मौजूद है अली का जिसमें अली मजदूरी करते थे, दरख्त लगाते थे खजूरों के, और हर साल जो फसल उतरती थी इतनी फसल उतरती थी कि उस सारी आमदनी से गुलामों को आजाद करते थे। तो 20-25 साल के अरसे में, यानी हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद से लेके शहादत तक, कितने कितने गुलाम आजाद किए अली ने? 400 गुलाम। तो इतना सस्ता तो नहीं था गुलाम उस वक्त, तो ये जरूर लोगों को आदत डाली कि आजाद करो इनको, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर सुलूक करो इनके साथ, अच्छा सुलूक करो इनके साथ, इन पर जुल्म ना करो, इनके लिए वहशी दरिंदे ना बन जाओ। जो तुम्हारे घरों में काम करते हैं उन पर वहशी दरिंदे ना बन जाओ, उन पर टूट ना पड़ो, गुलाम ना सही। ये घरों में काम करने वाले तो है ना मजबूर, बेबस मजलूम, इनके पर दरिंदे ना बन जाओ। तो अली के पास गुलाम रहने वाला था, जो गुलाम थे उन गुलामों से पूछो कि उनको अली की आजादी कबूल थी, कि अली से आजाद हो जाए, जानते थे कि अली से आजाद हो गई तो गुलामी है, अली की गुलामी में आजादी है, वो कंबर हो या दूसरे गुलाम जो साथ थे, वो चाहे घर की कमी से। तो 400 गुलामों को आजाद करने के लिए पैसा चाहिए भाई, तो इतना था अली के पास कि 400 गुलाम अली ने आजाद की, एक सिस्टम बनाया। लिहाजा इन गुलामों पर मेहरबानी करने का हुक्म दिया, आजाद करने का हुक्म दिया। मशीयत जानती है, अल्लाह का रसूल जानता है, मौला कायनात जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त खुद ही आएगा कि ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, और जिनके पास खत्म नहीं है आप क्या समझते हैं वो अभी गुलामों की खरीदारी, ये जितने भी ममालिक हैं अरब ममालिक सब जगह ही होता है, अब तक कारोबार होता है, वो कहते हैं जी हमें तो शरी हुक्म हम रख सकते हैं, गुलाम भी रख सकते हैं, कनीज़े भी रखते हैं, उनके घरों में है गुलाम भी है कनीज़े भी है। नहीं बताना चाहता कि मुझे कहां कहां के गुलाम, इस सरजमीन के गुलाम वहां मिले, गुलाम ने पैसा लिया उनके माँ बाप ने पैसा देके भेज दिया, जाओ वहां छोड़ के आ गए, खुद पैसा लेके इधर आ गए। आप भी जानते होंगे, कहीं ना कहीं खबरें पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, ऐसे ही है। अब आइए, सबने यही ऐलान किया कि कोई जबर नहीं, कोई जबर नहीं। हुसैन मदीने से निकले, मैंने बताया कि सफर लंबा करते चले गए, लंबा करते चले, क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा पैगाम, तवील सफर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम, हुज्जत तमाम करते जाओ, हुज्जत तमाम करते जाओ, लोगों को इख्तियार दे रहा है, हाकिम है हाकिम, निजाम पे निजाम खतरे में है, दीने मोहम्मद खतरे में, लोकाना दीन मोहम्मद दिन लम यस्तकिम इल्ला बिकतली फया सयूफ कुजीन, दीन खतरे में है, दीने मोहम्मद ही खतरे में। लिहाजा अब अल्लाह के रसूल का नवासा ऐलान कर रहा है, ऐलान करता हुआ जा रहा है कि दीन को बचाना है, मैं हाकिम है हकीकी, लेकिन साथ ही साथ अपनी रियाया का इख्तियार भी बताता हुआ जा रहा है कि जबरदस्ती नहीं है, जो मेरे साथ आएगा मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अपनी वादागाह की तरफ जा रहा हूं, मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, जो भी मेरे साथ है कत्ल कर दिया जाएगा, इसी तो दीन बचेगा, मेरी शहादत से ही दीन बचेगा। लोग सुन रहे हैं, जा रहे हैं, रात होती है चले जाते हैं, रास्ते में रात होती है चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि हाकिम है हकीकी। जानता है कि मुझे धोखे से नहीं लाना लोगों को, बता के हालात सच बताओ, लोग साथ दे या ना दे, लोगों से झूठ ना बोलो। जिंदगी में कई बार ऐसा मौका आया कि किसी मौके पर, कोई खास मौके पर, कुछ लोगों ने ये कहा कि इस वक्त लोगों से ये कह दें। नाचीज कहता था क्या होगा, लोग बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, देने दो, लेकिन झूठ ना बोलो। अपने लोगों से झूठ कभी नहीं बोलो, झूठ बोलोगे इनका एतबार उठ जाएगा। और आज लोगों का एतबार इसीलिए उठ गया कि आगे चलने वालों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अपने लोगों से झूठ ना बोलो, इनका एतबार उठ जाएगा, ये बेचारे बेयारो मददगार हो जाएंगे। इन्हें सही सूरत हाल बताओ, झूठ ना बोलो, क्या होगा, बुरा कहेंगे तुम्हें, कह दे बोलो, गालियां देंगे, खा लो गालियां। कार्य अंबिया है, कार्य रिसालत यही तो है, इसमें तो ये सब कुछ होगा, लेकिन झूठ ना बोलो, गलत बयानी ना करो। हमारी गलत बयानी है ही नहीं दीन के मामले में, झूठ ना बोलो लोगों से। लिहाजा जनाब इसके दुश्मन सबको बताते जा रहे, और जिसको लेना है उसको ले भी रहे, और इंशाल्लाह जिंदगी रही के लिए परसों बताएंगे किसको कैसे लिया है। हुर, हुर आजाद, हुर यानी आजाद, इस नाम में करीबन इसकी जमा क्या बनती है, अहरार। और अहरार हुसैन का एक लकब क्या है, सैयदुल अहरार। कयामत तक आने वाले आजाद लोगों का सरदार है हुसैन, आका है हुसैन, मौला है हुसैन। किन लोगों का, अहरार का, आजाद लोगों का, जो कभी भी जालिमों के सामने सर नहीं झुकाते, बातिल हुकूमतों के सामने सर नहीं झुकाते, उनका सैयद और सरदार है हुसैन। इसलिए हुसैन के एक लकब है सैयदुल अहरार। तो पहला हुर आया, कूफे का रहने वाला है, बनी तमीम का है, कबीला है बनी तमीम, हुर इब्न यजीद अर-रियाही अत-तमीमी, बनी तमीम का है, लेकिन हुर कूफे में रहता है। कूफे में घर है मगर रहता कहां है, सिपाही है, मुहाजों पे रहता है, लिहाजा कूफे में जो तगैयुर और तहय्युर पैदा हुआ इसकी खबर नहीं है उसे, किसने खत लिखे, कब लिखे, क्या हुआ नहीं मालूम, मुहाजों पे था, वहीं इसको कहीं किसी मुहाज पे खबर मिली हो, पहुंचा कि पहुंचो, रास्ते में मक्के से निकले हैं हुसैन, और हुसैन बहुत आहिस्ता आ रहे थे, बहुत आहिस्ता आ रहे हैं चलते हुए, क्योंकि हर जगह क़याम ज्यादा करते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए कि मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं। लोग पूछते थे ना, जैसे मालूम होता था फ़र्ज़ंदे रसूल का कारवां जा रहा है, फौरन पहुंचते थे खिदमत में, चलो ज़ियारत कर ले मौला की, कदमबोसी करे, और हुसैन सबको बताते थे। मंजिले ज़ी हशम, उस मकाम का नाम है मंजिले ज़ी हशम, और कहीं पर है शीन की जगह सीन, ज़ी हसम, लेकिन ज्यादा यही नकल किया जाता है, कहा भी जाता है ज़ी हशम बारा, कहीं ज़ी हसम पढ़ ले तो परेशान ना हो, दोनों जगह दोनों तरह से पढ़ा गया इसको। मंजिले ज़ी हशम पे पहाड़ के दामन में हुसैन ने खेमे नस्ब कराए। अब यहां से करबला का रास्ता ज्यादा नहीं, एक दिन या डेढ़ दिन से ज्यादा के फासले पर नहीं है करबला जहां पहुंचे। हालांकि अभी करबला का इरादा नहीं, अभी तो कूफे का इरादा है ना, लेकिन करबला का बता रहा हूं, करबला यहां से एक या डेढ़ दिन के फासले पर, यहां क्योंकि हुक्म यह होता है कि तेज रफ्तारी के साथ, जितनी तेज रफ्तारी के साथ जा सकता है पहुंच जा। और जहां हुसैन मिले, दो हुक्म मिलते हैं तारीखों में, दोनों बता रहा हूं आपको। पहला हुक्म यह मिलता है कि उसे हुक्म दिया गया कि हुसैन जहां भी है रास्ता रोक ले। दूसरा हुक्म जो बाज़ रिवायत में नकल किया गया है कि जहां भी हुसैन मिले उन्हें अपने साथ लेकर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दे। ये दोनों, ये भी इसलिए कह रहा हूं कहीं पढ़ लें तो आपको परेशानी ना हो। खैर, ये मैंने पहले विषय दर्ज कर दिया था, लेकिन अब जनाब हुर का क्योंकि तस्कर आ गया तो तफसील से बता रहा हूं आपको। जनाब हुर पहुंचे, 1,000 या 3,000 सिपाहियों के सरदार ने पहुंचे वहां, मगर पहुंचते वक्त हालत यह है कि पानी खत्म हो चुका था, प्यास से जाम अलग, हैवानों की जबानें निकली हुई थी, इंसानों का तो क्या हाल होगा। तो अभी अपना मुद्दा बयान नहीं किया, क्योंकि मुद्दा बयान करते तो पता नहीं फिर हुसैन पानी दे के ना दे, इंसान अपने हिसाब से सोचता है ना, इंसान है, आम इंसान है, अपने हिसाब से सोचता है। हालांकि पहले बता दे, बाद में बता दे, हुसैन प्यासों को तो पानी पिलाएगा, पिलाएगा ना, हुसैन है, हुसैन के बेटे ने अपने भाई के कातिल को पानी पिलाया था, सैयद सज्जाद ने हसीन इब्ने नमीर की प्यास बुझाई थी, जिसने भाई के सीने में बर्छी मारी, प्यास। लेकिन खैर, मारिफत की बात है कि वो इतना थोड़ी जानता है, बस ये जानता है कि फर्जंदे रसूल है, एहतराम भी करता है। अज़ादारा हुसैन आते ही कहता है, फर्जंदे रसूल मैं भी प्यासा हूं, मेरे सिपाही भी प्यासा, कुछ पानी की सबील हो जाए, हमारी प्यास बुझ जाए। हुसैन ने हुक्म दिया अपने अंसार को, मशकीजों के मुंह खोल दो, पानी पी। बेताब होकर हुर और उसके सिपाही पानी पर टूट पड़े। जब सैराब हो चुका हुर तो इसने अजीब नजारा देखा। अपनी प्यास बुझ चुकी तो इसने देखा कि हुसैन और उसके अंसार हुर के और हुर के सिपाहियों के हैवानों को पानी पिला रहे। ये पहला तीर था जो पेवस्त हो गया हुसैन की मोहब्बत का हुर के कल्ब में। ये कैसा शख्स है, मैं इसका रास्ता रोकने के लिए आया हूं। मुझे अपने जानवरों का ख्याल नहीं, मगर ये मेरे हैवानों को पानी पिला रहा है। क्यों? इमामुल इंस वल जिन्न है। हुसैन ऐलान कर रहा है, मैं सब का इमाम, मैं कायनात का इमाम हूं। लिहाजा हुसैन नहीं देख सकता कि इंसान सैराब हो रहे हो और हैवान प्यास की जबान बाहर हो। तो कहने की जरूरत नहीं, हुसैन ने खुद ही इसके हैवानों को सैराब करो, हैवानों को पानी पिलाओ। समझ गया कि यही इमाम है, यही रहबर है, यही रहनुमा है, यही रहनुमा है, जिसको अपने दुश्मन के हैवानों का भी ख्याल है। दुश्मन का नहीं, दुश्मन के हैवानों का भी ख्याल है। यही मेरा इमाम, यही वक्त का इमाम। शर्मिंदा हो गया, नमाज का वक्त हुआ, अपना लश्कर छोड़ के हुसैन के खेमे में आ गया, ये हुसैन के साथियों में आ गया नमाज पढ़ने के। जब सिपाहियों ने कहा कि गौर नमाज पढ़ा, कैसी बातें करते, अरे फर्जंदे रसूल की इक्तिज़ा में नमाज पढ़ने से बेहतर और कोई नमाज हो सकती है? मौका मिला है जिंदगी में, क्यों? हुर को पता ही नहीं कि जंग होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, वो तो समझता भी हो जाएगा, कोई ना कोई मामला चले जाएंगे, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। हुर को भी एहसास नहीं, अभी मैं आगे बताता हूं। हुर को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। वक्त गुजरा और हुसैन ने कूच का हुक्म दिया, रख सफर बांधो, सामान समेटो, खेमे समेटो, सफर। अब हुर बेचैन हुआ कि अब तो मसला हो गया, अब तो मुझे आगे बढ़ के रास्ता रोकना है हुसैन का। आगे बढ़ा, देखा कि हुसैन सवार हो चुके हैं अपनी सवारी पर। कहता है फर्जंदे रसूल, मुझे आपसे जंग करने का तो हुक्म नहीं है, लेकिन मुझे ये हुक्म देकर भेजा गया कि जहां भी आपको पाऊं आपका रास्ता रोकूं, या फिर वो दूसरी बात कि मैं आपको अपने साथ एहतराम से इब्ने ज़ियाद के दरबार तक लेके जाऊंगा। हुसैन फरमाते हैं नहीं, मेरी मंजिल कोई और है, मुझे वहां जाना है। तकरार हो गई, ज्यादा तकरार हुई तो हुर आगे बढ़ा। अब ऑर्डर इज ऑर्डर, हुर आगे बढ़कर इसने क्या किया, लुजा में फरस में हाथ डाल दिया, बात थाम ली हुसैन के फरस की, और कहता है कि फर्जंद रसूल मैं मजबूर हूं, मैं आपको यहां से आगे जाने नहीं दूंगा, ये मुझे हुक्म दिया गया, मेरी ड्यूटी, मेरे फराइज में शामिल। उसने ये हरकत की और इमाम ने बुलंदी फरस से डांट कर ललकार कर उसे कहा, छोड़ मेरी फरस की बात, तेरी मां तेरे मातम में बैठे। फर्जंद ज़हरा ने गुस्से में ये जुमला अदा किया, जानते हैं आपके हुर ने बाग छोड़ दी, सर झुका के खड़ा है, पीछे नहीं हटा, बाग छोड़ दी। बाग छोड़कर कहता है फर्जंद रसूल, आप तो मेरी मां के बारे में जुमला कह सकते हैं, मगर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आपकी मां के बारे में सिवाय दुरूद व सलाम के कुछ भी नहीं कह सकता। आपकी जगह कोई और ये जुमला इस्तेमाल करता तो फिर यहां का नक्शा कुछ और होता। देखिए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। ये जुमला कहा है उसने और लिखा हुआ है, तो पढ़ने में मुझे कोई आर नहीं कि आपके कानों को कैसा लग रहा है, उसकी वजह से मैं लफ्ज को बदल दूं, मोड़ दूं, तोड़ दूं, ये सब मुनासिब नहीं। वही बात कि झूठ नहीं बोलना है भाई, जो रिवायत वो पढ़ो, आपकी जगह कोई और ये जुमला अदा करता तो मामला कुछ और होता, यानी नक्शा कुछ और होता। और मुझे फिर कहता है फर्जंद रसूल, मेरी मजबूरी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, मैं मजबूर हूं, मुझे आपसे जंग करने का हुक्म नहीं है, ना मैं आपसे जंग करना चाहता हूं। ये उसने जुमला कहा, मैं आपसे जंग करना भी नहीं चाहता, मेरे पास सारे हवाले मौजूद हैं, मैं जो बात कर रहा हूं जिम्मेदारी से कर रहा हूं यहां बैठकर, मैं आपसे जंग करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं, कोई रास्ता निकालिए, कोई दरमियानी रास्ता निकालिए, मुझे इस मुश्किल से निकालिए। तो अब मुझे बताइए, कितना एहतराम तो किया ना हुर, जानता है ना कि किस माँ का बेटा है, किस रसूल का बेटा है उसे, क्या उमर सात का लश्कर उसके सिपाही नहीं जानते थे, ये बात जानते थे ना। तो यही फर्क है, हर आदमी ऐसे नहीं आ जाता कि गुनाह को छोड़ के सवाब की तरफ आ जाए, जहन्नम को छोड़ के जन्नत की तरफ, नहीं, ये उसका अमल, ये अमल इस बात का मूजिब बना उसने जो जहरा का एहतराम किया, जो हुसैन की माँ का एहतराम किया, तो अब दुश्मनों के लश्कर में कैसे रह सकता था? नहीं रह सकता था ना। इसलिए हुसैन जानते हैं कि मेरा सिपाही है। क्यों? ज़ुहैर बिन क़ैन ने आगे बढ़कर कहा था कि फरजंदे रसूल बस अभी ये कम है, हम इनसे यहीं पे जंग कर लेते हैं, यहीं पे हमला करते हैं, खत्म करते हैं इनको। ये आपसे ऐसे लहजे में बात कैसे कर रहे हैं? हुसैन ने मुस्कुरा कर ज़ुहैर को कहा था, ज़ुहैर जंग नहीं करनी, और फिर हमारा शेवा भी नहीं, जब कोई हमसे जंग नहीं कर रहा तो पहला हमला हम नहीं करते। हुसैन ने ये नहीं बताया ज़ुहैर को, ज़ुहैर अभी हो रहे कुछ देर की बात है, हुर तेरी सफ में होगा, हुर तेरे साथ खड़ा होगा, ये नहीं बताया हुसैन ने। खैर, तय ये पाया कि चलो जब तक नई सूरत हाल आती है सामने, दरमियान का रास्ता अख्तियार कर, फिर ये नैनवा तक पहुंचे। कल मैं पढ़ चुका, करबला तक पहुंचे। अब हुर देख रहा है कि लश्कर पे लश्कर आ रहा है, लश्कर पे लश्कर आ रहा है, और सुलह की कोई सुलह का कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा। ये तो हालात जंग की तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ। जब शिमर आ गया तो अब तो हुर की परेशानी और बढ़ गई, ये मलून आ गया, अब तो जंग जरूर होगी। अब ये परेशान, नौ को जंग का ऐलान हुआ, टल गया, मुतमईन हो गया कि जंग नहीं हुई अब, पर क्योंकि बहादुर है, बहादुर आदमी गैरतमंद होता है, बाहमियत होता है, और परेशान है कि मैं करूं क्या। उमर साद के खेमे में गया, वहां से भी यही जवाब, सुबह तो जंग होगी। ये बनी हाशिम ऐसे जेर थोड़ी होंगे, मैदान लाशों से पट जाए, ऐसी जंग होगी, इनका बच्चा बच्चा ऐसी जंग करेगा। अब खेमे में आके टहल रहा है, चेहरा जर्द है, हाथ मल रहा है, यह है हुसैन का दिया हुआ इख्तियार। हुसैन चाहते हैं कि अपनी मर्जी से आना, मैं जबरदस्ती किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, हुज्जत तमाम करता रहूंगा। तुम मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकोगे, मैं तुम्हारे सरदार को लेकर आ जाऊंगा। ये हुसैन की हाकिमियत का ऐलान है करबला में हुर का आना, कि हाकिम वो नहीं था, हाकिम हुसैन था, बादशाह हुसैन है, शहंशाह हुसैन है। आज तक बादशाहों के सर झुककर ऐलान करते हैं हुसैन की बादशाही का, करते या नहीं करते? तो हुसैन की हुकूमत उस वक्त नहीं थी, आज तक हुसैन की हुकूमत है। दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है हुसैन, हुसैन अपनी हाकिमियत का ऐलान कर रहा है कि मुझे अल्लाह ने हाकिम बनाया, मैं दीन का मुहाफिज हूं। भाई ने आगे बढ़कर कहा, हुर क्या हुआ, किसी जंग में तेरी ये कैफियत नहीं देखी, बड़ी से बड़ी जंग, मुख्तसर सी जंग है, दोपहर में खत्म हो जाएगी, तू इतना परेशान है? जरा खामोश तो हो, ये आवाजें तो सुन, बच्चों की आवाजें आ रही हैं हुसैन के खेमों से, अलतश अलतश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। भाई ने सर झुका लिया, हुर कहता है, अब इंसाफ से बता, ये उसी हुसैन के बच्चे नहीं है जब हम प्यासे थे हुसैन ने हमें सैराब किया था? ये उसी हुसैन के बच्चे नहीं कि जिस हुसैन ने हमारे हैवानों को भी सैराब किया था? मेरे भाई, हमने क्या किया? मुझे नहीं पता था कि नौबत यहां तक पहुंची, फर्जंदे रसूल से लोग जंग करेंगे, दुख्तरे रसूल के बेटे से लोग जंग करेंगे, ये कहां तक बात पहुंच गई? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोजख, इनके साथ रहता हूं मार दिया जाऊंगा, जिंदा रहूंगा, इनाम इकराम भी मिलेगा, मनसब बढ़ जाएगा, मगर ये बता कि हुसैन से जंग करने के बाद, कत्ले हुसैन में शरीक होने के बाद, फिर कोई नजात का रास्ता है? फिर कोई शफात की उम्मीद है? फिर जहन्नम से बचने की कोई सबील है? हाँ, ये जरूर है कि हुसैन की तरफ जाऊंगा तो मार दिया जाऊंगा, आदमी ही कितने हुसैन के साथ, लेकिन ये तो तय है ना कि हुसैन कयामत में सरदार है, शाफे महशर है, रसूल का नवासा है, अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया। भाई समझ गया, बेटा भी आगे बढ़ा, बाबा से कहता है, बाबा मैं समझ रहा हूँ तेरी कैफियत, जानते हैं ना अपने बाप के मिजाज को, वो अपने भाई के मिजाज को जानता है, दोनों कहते हैं कि इत्मीनान से फैसला कर, हम तेरे साथ, जो तुझे फैसला करना है, तेरी कैफियत हम समझ रहे हैं। बस इसने जल्दी से अपने हथियार उठाए, वो कहता है मैं चला हुसैन की तरफ, तुम जो चाहो करो, मुझे कोई सरोकार। भाई ने भी अपना सामान उठाया, हथियार उठाया, बेटे ने भी हथियार उठाया, ये भी कहा नहीं, हम भी तेरे साथ हैं, तू हक के रास्ते पर है, हम तेरे साथ। गुलाम को कहा तुझे आजाद कर दिया, गुलाम कदमों में गिर पड़ा, मौला ये क्या कर रहा है, ये जहन्नमियों के साथ था तो मुझे साथ रखा, अब जन्नत में जाने की बारी आई तो मुझे छोड़ के जा रहा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। उधर हुसैन ने अपने अंसार को हुक्म दिया, जाओ आगे बढ़ो, इस्तकबाल करो, हुर आ रहा है, एहतराम से लेकर आना, दोस्त बन के आ रहा है, दुश्मन बन के नहीं आ रहा, दोस्त बन के आ रहा। इधर से जैसे ही ये सुना, खुश हो गए अस्हाबे बावफा हुसैन के, और पूरे काफिले की सूरत में बढ़े मैदान मुखालिफ समत में, कमर बनी हाशिम सबसे नुमाया, और जो अपने घोड़े पर सवार है भाई अपने घोड़े पर, बेटा अपने घोड़े पर, गुलाम अपने घोड़े पर, घबरा गया हो जल्दी से सवारी से उतर आया नीचे। नीचे उतर कर कहता है भाई ये ना समझे ये लोग कि मैं जंग करने आ रहा हूं, देख कबर बनी हाशिम नुमाया है सबसे, मेरे हाथ बांध दे। अम्मा उतार दिया अपना का, मेरे हाथ बांध दे, मैं मुजरिम हूं। मुजरिमों को ऐसे ही जाना चाहिए अदालत। और जब वो बढ़ते हुए साए खयाम हुसैनी से करीब हुए तो चिल्ला कर हुर ने पहचान कर कहा अब्बास को, कमर बिनी हाशिम ना नुमाया सबसे, पहचान कर फर्जंद बूतरा जंग के इरादे से नहीं आ रहा, जंग के इरादे से नहीं आ रहा, मैं गुनाहगार हूं, अपने मौला से माफी का खास्तगार हूं, तौबा के लिए हाजिर होना चाहता। आगे बढ़कर अब्बास ने गले से लगा कर कहा, सीने से लगा कर कहा, और तेरे इस्तकबाल ही के लिए तो भेजा है मेरे मौला ने। जैसे ही खेमागाह से करीब हुए होर गिर पड़े जमीन पे, जानुओं के बल चलना शुरू किया और आगे पहुंचकर हुसैन की बारगाह में पहुंचकर अपना सर गिरा दिया हुसैन के कदमों और रोना शुरू कर दिया, बिलक बिलक कर रो रहा है जैसे किसी बिछड़े हुए मासूम बच्चे को माँ की गोद मिल जाए, रोता है ना मोहब्बत ऐसे, होर कब का बिछड़ा हुआ हुसैन की आगोश में सर रख के रो रहा है। कहते मौला मैं इन बच्चों की प्यास का जिम्मेदार हूँ, मौला मैं सूरत हाल का जिम्मेदार हूँ, मौला मैं गुनाहगार हूँ, काश मैं ना रोकता आपका रास्ता, काश मैंने ये ना किया तो मौला क्या मेरी माफी हो जाएगी, क्या आप मुझे माफ कर देंगे, क्या मेरी खता बख्श दी जाएगी, क्या मेरा गुनाह माफ हो जाएगा। हुसैन ने सर उठाया, पेशानी के बोसे दिए, कलेजे से लगा कर सर को होर से कहा, होर जा मैंने भी माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ किया। करीम इब्ने करीम हुसैन माफ करके बता रहे कि मैं हाकिम हूं, मैं हाकिम हूं, मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए निकला हूं, दीन का तकाजा यही, कोई सिद्क दिल से माफी मांग रहा हो उस वक्त जबकि उसका हाथ खून हुसैन से किसी बेगुना, किसी भी बेगुना हुसैन नहीं, किसी बेगुना के खून से रंगीन ना हुआ हो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जहां बेगुनाहों के खून से हाथ रंगीन हो जाए वहां तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोगों के दिमाग चल जाते हैं। आप समझ रहे होंगे बहुत सारी शख्सियतें आपके जहनों में आ जाएंगी कि अल्लाह उनसे तौबा की तौफीक को सल्ब कर लेता है जिनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगीन हो जाते हैं। बस हुसैन ने कहा मैंने भी माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ किया, और खुश हो गया। जंग का आगाज हुआ, सबसे पहले होर ने अपने गुलाम को भेजा, अपने भाई को भेजा, अपने बेटे को भेजा। जब बेटा लखनऊ से चूर होकर गिरा था तो मकातिल में लिखा है कि होर ने के बेटे ने आवाज दी थी, बाबा मेरी मदद को पहुंच, मैं इस दुनिया से चला। बस ये बेटे की आवाज सुनकर होर से बर्दाश्त ना हुआ, जवान बेटा मजाक तो नहीं है ना, जैसा चिल्लाता हुआ दौड़ा, मेरे लाल में आ रहा, मेरे लाल में आ रहा। बस हुसैन ने जो हुर की एक कैफियत देखी तो चिल्ला कर कहा अब्बास दौड़ो, अली अकबर दौड़ो, जवान बेटे का लाशा है, हुर से देखा ना। मैं जानता हूं कि आपके जहन कहां पहुंच गए, मैं जानता हूं कि आपके दिलो दिमाग में कौन सा मंजर आ गया, मैं जानता हूं आप यही सोच रहे होंगे ना कि अरे कोई तो रुक जाए, कोई तो ठहर जाए, जब हुसैन को रन का रास्ता नजर न आ रहा हो, कोई तो आगे बढ़कर कहे जवान बेटे का लाशा है। मैदान में गए हुसैन, हुर के बेटे के लाशे को उठाकर लाए और मैदान में गया, वापस जख्मों से चूर इस हालत में आ रहा, बल्कि गिरा घोड़े से, और ये कहता हुआ गिरा, मौला मेरी खबर लीजिए, मैंने अपनी जान आप पर कुर्बान कर, चंद लोग हैं जिनके सरे बाली हुसैन पहुंचे हैं, जिनमें जान बाकी थी, उनमें से एक हुर है पहुंचे, हुर का सर उठा के अपने जानू पे रखा, कलेजे से लगाया, सर के जख्म से खून बह रहा है तेजी से, आंखें खोली हुर ने, कोई तकलीफ के आसार नहीं, बस एक जुमला कहा, मौला मेरी खता तो माफ हो गई ना, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना, अल्लाह की बारगाह में मैं बख्श तो दिया गया। बस ये जुमले सुनकर हुसैन की आंखों से भी आंसू जारी हो गए और ये अश्क टपक टपक कर गिर रहे हैं चेहरे पर घूर के। और हुसैन फरमाते हैं, हुसैन हो तेरी माँ ने तेरा नाम सही रखा था, तू यहां भी आजाद है, तू आखिरत में भी आजाद है, और तुझे मैंने भी बख्शा, मेरे अल्लाह ने भी बख्शा। बस हुर के चेहरे पे इत्मीनान, इत्मीनान ही इत्मीनान है हुर के चेहरे पे, दम निकल गया हुर का चेहरे पे इत्मीनान, मगर खून नहीं रुकता था, खून मुसलसल बह रहा था। हुसैन ने अपना रुमाल निकाला, हुर की पेशानी पर बांधा, उस जख्म को बंद कर दिया, खून बहना रुक गया। बस अब जो इत्मीनान है वो कुछ और है उनके चेहरे पर, क्योंकि जानते हैं ना आप, ये रुमाल कोई आम रुमाल नहीं है, ये हुसैन की मां जहरा के हाथ का बनाया हुआ रुमाल। और ये इत्मीनान क्यों, ये तबस्सुम क्यों हुर के चेहरे पर, सिर्फ इसलिए कि अगर कयामत के दिन हुसैन की मां ने शिकवा किया, गिला किया कि हुर तूने मेरे बच्चों का रास्ता रोका था, तो ये रुमाल खोल कर दिखा दूंगा, ए शहजादी ये कौन है, ए दुख्तर रसूल आपके बेटे ने मुझे माफ कर दिया होगा।
ظلموا ايام ينقلبون